vivo.
कृष्णानुभाव श्रवणे
Shaddhano Mahamana. Paprasya Pusha Cha Bhi Imam Yaha Eva Isi Tarha Artham Prayojan Yad Jo Ma Musse Pruchataha. आप पूछते हैं सत्तमा हे महर्षियों कृष्ण अनुभव कृष्ण के विचार में लीन श्रवणे सुनने में श्रद्धाना श्रद्धा से पूर्ण महामना महात्मा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के उसके साथ और एक श्लोक है जिसको मैं पढ़ता हूँ संस्थां विज्ञाय सन्यस्य कर्मतये त्रयवर्गिकं च यद् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः अनुवाद इस प्रकार से है हे महर्षियों महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहकर अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर अर्थात धर्म के कार्य आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो तात्पर्य इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति ये तीन कर्म आकर्षक होते हैं वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्म कांडीय अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था लेकिन शुक्रदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे ये भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही जिनके प्रति अपने जन्म से ही उन्हें सहज प्रेम था सर्वे सर्वा है इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्म कांडीय कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया यह सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त हो जा पाती है मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ज्ञानी सकाम कर्मियों से हजार गुना अच्छे हैं और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त होता है ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से बिरला ही कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में 7.19 में घोषित किया है महाराज परीक्षित को विशेषतया महामना शब्द से विभूषित किया गया है जो उन्हें भगवद गीता में वर्णित महात्माओं के समान बना देता है बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं वे भी जीवन की समस्त कर्म कांडीय धारणाओं से परित्याग करके धारणाओं का परित्याग करके भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे भगवान चैतन्य ने जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है शिक्षा स्तकम 8 में शिक्षा दी है अश्लेष वापादरताम पिनस्तु माम आदर्श आदर्श माम अरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परमा अनेक भक्तों के प्रेमी भगवान कृष्ण चाहे वो शरणागत दासी का आलिंगन न करे या अपने पांवों के नीचे रौंद दे या मेरे समक्ष दीर्घ काल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दे तो भी मेरे हृदय के परमेश्वर कृष्ण है श्री रूप गोस्वामी ने इस प्रकार कहा है विरचयन मयि दण्डं दीनबन्धो दयामि वा गतिरिह न भवतः कादिचन्याममास्ति निपततु शकतोटिनिर्भरं मानवाम्ब तदापि किल पयोध स्तूयते चातकेन हे दिनों के स्वामी आप जैसा चाहे मेरे साथ करें चाहे आप दया दिखाएं या दंड दे, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसको मैं निहारूं। चातक पक्षी सदैव बादल से प्रार्थना करता है, चाहे वो वृष्टि करे या वज्र गिरा दे। चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु श्री माधवेन्द्रपुरी ने निम्नलिखित शब्दों के साथ समस्त कर्म कांडीय उत्तरदायित्व से छुट्टी पा ली थी। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोस्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरक्ष तर्पण विधो नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्धया दवकुलोत्तमश्च कंसद्विषा स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवो तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए आपने समस्त पापों के फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूँ कि यह यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। श्री माधवेन्द्र पुरी ने आगे कहा है, मुग्धम मुग्धम माम निगदन्तु नीति निपुणां भ्रांत मुहुर वैदिका मंदम बांधव संचया जड़धियं मुक्तातरा सोदरा उन्मत्तम धनीन विवेक चतुरा कामम महादांबिकम मोक्तुम न क्षामते मनागपि मनो गोविंद पादस्पृहां। भले ही नित्य निपुण लोग मुझ पर मोहित होने का दोषारोपण करें, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पतभ्रष्ट कहले, मेरे मित्र तथा सर्वज्ञ मुझे हताश कहे, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहे और धनवान लोग मुझे पागल कहकर उंगली उठाए और विद्वान दार्शनिक भले मुझे आदिम दंभी कहे, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से एक इंच भी नहीं हटता, यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूँ। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा, धर्मार्थ काम यदि यो विहि श्रीवर्गम इच्छा त्रयी नय दमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदखिलं निगमश्च सत्यं स्वात्मार्पणं स्वहृदय। परमर्ष पुंसा मोक्ष पद प्राप्त करने के तीन उपाय माने जाते हैं, धर्म अर्थ तथा काम। इनमें से विशेष रूप से इच्छा त्रयी आत्मज्ञान, सकाम कर्म का ज्ञान, तर्क तथा राजनीति और अर्थशास्त्र जीविका के विभिन्न साधन है। ये सब वैदिक शिक्षा के विभिन्न विषय हैं, अतएव मैं इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूँ। इसके विपरीत भगवान विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इसे परम सत्य मानता हूँ। भगवद गीता में इस सारे विषय को व्यवसायत्मिक बुद्धि के रूप में या सिद्धि के परम पद के रूप में माना गया है। महान वैष्णव विद्वान श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसकी परिभाषा भगवत अर्चना रूपैक निष्काम कर्म भी विशुद्ध चित्तः के रूप में दी है, अर्थात सकाम कर्म फल से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को मूल कर्तव्य समझना। अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्म कांडीय धारणाओं को त्याग कर भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से स्वीकार किया। ओम ज्ञान दिव्यदर्श ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषियों ने उनको प्रेरित किया, उनको प्रश्न आदि पूछे कि आप कृष्ण गुण ख्याने, कृष्ण के गुण आदि को वर्णन करो, हाँ, जो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे सूत गोस्वामी ने कहा कि यही सारी जो चर्चा है कृष्ण गुणाख्यान, जो परीक्षित महाराज और वयासकी शुकदेव गोस्वामी के बीच में घटित हुआ था, तो उसको मैंने सुना है। और फिर पिछले श्लोक से हम श्रवण करते हैं कि सूत गोस्वामी राजा परीक्षित के दिव्य गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे जो राजा परीक्षित थे, जिनकी जो मति है वो कृष्ण में हमेशा के लिए लगी हुई थी, आज भी उसी को ही इस श्लोक में कहा है, कृष्णानुभाव श्रवणे, श्रवण के द्वारा ही कृष्ण में उनकी भावना लीन हो गई थी, भावना भावित हो गए थे। किससे श्रवण करके? शुकदेव गोस्वामी से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जिनकी मति कृष्ण में लगी थी बचपन से ही, इस कृष्ण मति लगने के कारण ही ऐसे राजा परीक्षित आत्मजाया सतागार पशु द्रविण बंदिशु, कि अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना महल, हाथी, घोड़े, खजाना, बंधु, राज, इन सबके प्रति जो ममता, जो हो नित्यम विरुढ़ाम ममता, विरुढ़ाम का मतलब है गहरी, बहुत डीप जो आसक्ति है इन सब चीजों के लिए एक व्यक्ति के हृदय में, ममता जो हो, जो हमें बहुत सरलता से त्याग दिया। राजचा अविकले, अविकले का अर्थ है कि बिना किसी कष्ट के किसी चीज को हम त्यागते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है, कष्ट अनुभव होता है, क्योंकि आसक्ति को निकाला जा रहा है। तो लेकिन राजा परीक्षित के साथ ऐसे नहीं हुआ, बिना किसी कष्ट के उन्होंने ये जो आत्मजाया सतागार पशु द्रविण बंधुषु, इन सब चीजों को उन्होंने बहुत सरलता से त्याग दिया, त्याग पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो आसक्ति है वो कृष्ण से हो गई थी। और इसी श्लोक में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए शुकदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी कह रहे हैं, कि ऐसे जो राजा परीक्षित जो कृष्ण के विचारों में लीन रहकर, और जिन्होंने ये जाना कि मेरे जो मृत्यु है आसन्न है, नजदीक है, उन्होंने तुरंत ही इस चौथे श्लोक में वर्णन आया है, संन्यास कर्म त्रय वर्गीकम, उन्होंने क्या किया? संन्यास, संन्यास का मतलब है त्याग दिया। कौन से कर्मों को त्याग दिया? त्रयवर्गीकम, त्रयवर्गीकम जो कार्य है उनको त्याग। वास्तव में परीक्षित का जो जीवन है वह हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है, एक हर एक व्यक्ति के लिए, कि किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज है, आत्मभावम दृढ़म गता, आत्मभावम इस आत्मभाव कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम के कारण कृष्ण भक्ति में या कृष्ण के श्रवण आदि में दृढ़ गता, बिल्कुल दृढ़ थे, जिसको भगवान, और इसी कारण से उन्होंने बाकी सब चीजों को त्याग दिया, जो त्रयवर्गी का मतलब जहां इस श्लोक में कहा गया है। कौन कौन सी चीजों को उन्होंने त्यागा? धर्म, अर्थ और काम, क्योंकि उनकी बुद्धि दृढ़ थी, जिसको भगवान ने भगवद गीता में कहा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह पुरुनंदन। तो एकेह पुरुनंदन, उनका जो डिटर्मिनेशन है, बुद्धि है, वो बहुत दृढ़ था कृष्ण में, और इसी कारण से वास्तव में वो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा श्रवण करने के पात्र बने। भागवत में, गीता में भगवान कहते, भजन्ते माम दृढ़व्रता एषां त्वान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वनिर्मुक्तां भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो ये जो दृढ़ता है जिसको भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है, या ऐसे महान व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसलिए आप देखते हैं कि उनको महामना कहा गया है। भागवतम में कई वैष्णवों को महामना कहा गया है, इनको भी, नारद को भी कहा गया है, प्रहलाद को भी विशेष रूप से, वसुदेव को भी कहा गया है, नंद महाराज को भी महामना कहा गया है। हाँ, तो महान महामना जिनको महात्मा भी कहा जाता है, ग्रेट सोल्स प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं, या महामना को प्रभुपाद कहते हैं कि मैग्नेनियमस, उदार, उदारा सर्व एवेते, उदार व्यक्ति। तो वास्तव में ऐसे महात्माओं का बुद्धि ही एकाग्र हो सकता है, कृष्ण के चरणों में स्थिर हो सकता है, स्थिरमति जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन का था, द्रोणाचार्य ने कहा, सारे जब सबका एग्जाम ले रहे थे और उन्होंने बुलाया हर एक, जो कौरव पांडव आदि बाण उठा उठा के देख रहे थे पेड़ की ओर, और सबको बुलाया और कहा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। कोई कहता है मुझे बेल, जब आए तो उन्होंने कहा पेड़ के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, दुर्योधन को और भी कई चीजें दिख रही थी। लेकिन जैसे ही जो महात्मा है अर्जुन, उनको बुलाया तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, केवल पक्षी भी नहीं, आंख, ये है एकेह गुरुनंदन। तो प्रभुपाद कहते ये जो श्लोक है इसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, जिस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि जो शिष्य है वो उसका बुद्धि भी, एकाग्रता भी गुरु के इंस्ट्रक्शन में उसी प्रकार से होती है, व्यवसाय का बुद्धि। तो वास्तव में ऐसे जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने इन चीजों को त्यागा, संन्यास कर्म त्रैवर्गिकम, त्रैवर्गिकम ये समझना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता में कृष्ण 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये वर्णन करते हैं, त्रैविद्या सोम पापूत पापा। त्रैविद्या क्या है, सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद, ये त्रैविद्या है, तीन विद्या है। और जो व्यक्ति इन तीन विद्याओं में, तीन वेदों में पारंगत होता है उसको त्रिवेदी कहा जाता है, त्रिवेदी। तो दुर्भाग्य क्या है, चाहे आप त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो या द्विवेदी हो, दुर्भाग्य क्या है कि इनका जो पहुंच है वो केवल आहुति तक ही सीमित रहती है, ओम स्वाहा। और ये सारे लोग वेदों का उद्देश्य को नहीं जानते और कर्म कांड में फंसे रहते हैं। तो इस पूरे तात्पर्य में कर्म कांड को हटाया गया है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, चाहे वह त्रिवेदी हो या जो वेदी हो, हाँ, वो लोग क्या है, बहुशाखा ही अनंतश बुद्धियो अव्यवसायिनाम। इन लोगों की जो मति है, बुद्धि है, वो बहुशाखाओं में विभक्त हो गई है, जिस कारण से उनके पास क्या नहीं है, व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है। बुद्धि कैसे है, अव्यवसायात्मिका, चंचल है। और ऐसे लोग का जो गोल है शास्त्रों को अप्रोच करना या धर्म की प्रैक्टिस करना, हाँ, रिलीजन को फॉलो करना, उनका गोल या उनके गोल की जो एक्टिविटी है वो केवल एक ही होता है, भोग, भोग। इसलिए है धर्म, अर्थ और काम, यहां तक ही उनकी पहुंच होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2वें अध्याय में ही व्यासदेव इसकी बहुत जोर से भर्त्सना करते हैं। वो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवत्र, ये जो धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, ये क्या है, कैतव है, कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है। क्यों चीटिंग रिलीजन है, 2वें अध्याय में पहले स्कंद के कृष्ण सूत्र गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य केवल धन या इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना नहीं है, धर्मश ही अपवर्गश, दूसरे अध्याय में कहते हैं धर्म किस लिए है, अपवर्ग। अपवर्ग क्या है? पवर्ग आप जानते ना, प प ब ब म, हाँ, मृत्यु तक, परिश्रम से लेकर मृत्यु तक, म तक, ये पवर्ग है। ये जगत को पवर्ग कहा जाता है। ये जगत का, ये संसार का एक नाम पवर्ग है, और इससे परे जाना उसको अपवर्ग कहा जाता। अपवर्ग वर्तमानी भगवान कहते हैं। इसलिए सूत गोस्वामी ने कहा धर्मश ही अपवर्गश नार्थो अर्थाय उपकल्पते। ये अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है, धन अर्जन करने के लिए नहीं है। नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामलाभाय विस्मृता। तो ये जो धर्म आदि का पालन करना, इसका उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है। ये धर्म अपवर्ग के लिए है। कामश्य न इंद्रिय प्रीतिर जीवेत यावत्। तो कामना उनका के लिए ये धर्म नहीं है। तो वास्तव में ये जो वेद है, हाँ, ये तीन कांडों से, तीन कांड हैं जिनसे डील करते हैं। भगवान ने भी गीता में एक चीज का वर्णन किया है, भगवद गीता है। एक ही चाहिए। तो भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, हाँ, क्योंकि वेद, ये जो वेद है ये तीन चीजों से डील करते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कर्म कांड क्या है? कि कर्म कांड वो चीज है, ऐसे कार्य करता है व्यक्ति जिसके द्वारा, मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉर बेटर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इसको कर्म कांड कहा गया है। प्रभुपद कहते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉर बेटर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो सकाम कर्मों में व्यक्ति को लिप्त होना है, इस अभिलाषा से कार्य करने हैं कि भौतिक लाभ उन्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक के तात्पर्य में, शुरुआत में ही वो कहते हैं, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो विधि है उसमें उनको उन्नत कराने के लिए वास्तव में कर्मकांड आदि है। तो ऐसे जो त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, एक वेदी, ये भूल जाते हैं कि वेदेच सर्वेर अहम एव वेद्यो। वेदों को जानना या वेदों का लक्ष्य है भगवान को समझना। तो क्यों लोग ऐसे कर्मकांडीय चीजों के प्रति आकृष्ट होते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो मारी गई है। मारी गई मतलब वो चंचल बुद्धि वाले हैं या कम बुद्धि वाले हैं, जिसके कारण वो इन चीजों के प्रति आकृष्ट होते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 42-43 श्लोक में, यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपक्षितः अविपक्षितः, जो अल्पज्ञ है, हाँ, वो क्या होते हैं? वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यवान जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कर्मकांड आदि में व्यक्ति लग जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जैव धर्म है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो धीरे धीरे इस कर्मकांड की विधि की ओर आकृष्ट होता है, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है भुक्ति, भोग। और वो जब शास्त्रों को अप्रोच करता है, शास्त्र एक कामधेनु के समान कहे गए हैं। कामधेनु, कामधेनु का मतलब सारे कामनाओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो शास्त्र कामधेनु है। तो शास्त्रों को जिस भावना से व्यक्ति अप्रोच करता है वो चीज आपको मिलेगी। जैसे गौर गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद की किताबों के लिए कहा करते थे कि प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो ओशन के समान है, सागर के समान है। तो जो इनको ऊपर ऊपर से अध्ययन करेगा उसको, जैसे सागर में ऊपर से ऊपर ढूंढेगा तो उसको मछलियां ही मिलेगी, सागर के नीचे जाएगा जितना डीप जाएगा उतना उसको ज्वेल्स, मोती, हीरे, माणिक्य आदि मिल सकते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्रों को जिस भावना से व्यक्ति अप्रोच करता है उस प्रकार से ये कामधेनु के समान है हमें प्राप्त होती है। तो वास्तव में शास्त्रों में तीन प्रकार के सुखों का वर्णन किया है और ज्यादातर व्यक्ति दो प्रकार के सुखों की ही अभिलाषा लेकर शास्त्रों को अप्रोच करता है या धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है। क्या है वो तीन प्रकार के सुख जो शास्त्रों में वर्णित है? पहला सुख है अहिक। अहिक का मतलब है शारीरिक, बॉडीली, इस भौतिक जगत में ही बने रहना, सुख आदि को प्राप्त करने की अभिलाषा रखना। इसलिए लोग अलग अलग देवताओं को अप्रोच करते हैं, सुंदर भारिया चाहिए, पत्नी चाहिए, शिव जी के पास जाते हैं या पार्वती के पास जाते हैं, पति चाहिए, शिव जी पार्वती आदि है। भौतिक विघ्नों से विनाश करना है तो गणपति महाराज है, गणेश जी हैं, हाँ, और कुछ भौतिक तृप्ति चाहिए, दुर्गा जी हैं, हाँ। तो इस प्रकार से नाना देवी देवताओं को व्यक्ति अप्रोच करता है। क्यों? क्योंकि वो इसी जगत में बना रहना चाहता है और ये जो पहला प्रकार का सुख है वो प्राप्त करना चाहता है, अहिक सुख की जो अभिलाषा है। और दूसरे प्रकार का सुख भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं आमंत्रिक सुख। आमंत्रिक का मतलब इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में मुझे सुख मिलना चाहिए, उसको कहा गया है जो इस 14 भुवन उच्च लोकों में उस सुख प्राप्ति की अभिलाषा करता है, हेवनली प्लैनेट्स। जैसे यजुर्वेद में कहा है स्वर्ग कामो अश्वमेधम यजत, कि आपको स्वर्ग जाने की कामना है तो अश्वमेध यज्ञ करो। अक्षयम है में चातुर्माश यजना सकृतम भवति, कि आपको लंबा समय भोग करना है उन्नत लोगों में तो आप चातुर्माश को ठीक से फॉलो करो। ज्योतिषोम यज्ञ, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं गीता के स्वर्ग जाने के लिए ज्योतिषोम यज्ञ भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म कांड है उसमें व्यक्ति केवल इन दोनों सुखों की पूर्ति के लिए लगा रहता है। एक अहिक सुख इस जगत में रहने मिलने वाला सुख शरीर आदि के लिए, हाँ, बेटर फैसिलिटी चाहता है, बेटर इंद्रिय तृप्ति चाहता है कर्मकांड की विधि को पालन करते हुए। और दूसरे प्रकार के सुख की अभिलाषा क्या करता है? नेक्स्ट लाइफ, अगला जीवन कहाँ चाहिए मुझे? चंद्रमा में चाहिए या फिर इंद्रपुरी में चाहिए, जहां हमें इंद्र के जो अप्सराएं हैं उर्वशी, रंभा, मेनका आदि के संग में उपभोग करूं और उनके संग में उनका जो गार्डन है नंदन कानन उसमें घूमूं और नाना प्रकार के जो फूल है सौंदर्यवान उनको सूंघता रहूं। और जो गंधर्वाज है, यहाँ का फिल्म स्टार के द्वारा गीत सुनते हैं, वहां किसके द्वारा सुनोगे? गंधर्व विद्या जो गंधर्व के द्वारा, और विद्याधरी, विद्याधर है तो विद्याधरिया है वहां, उनके द्वारा उपभोग उनका करोगे। तो लेकिन कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में, त्रैविध्यामाम सोम पापूत पामा पापा यज्ञ निष्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नान्ति दिव्यान् देवी देव भोगान्। 9.20 जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ये सारे जो सुख हैं, चाहे इस जगत के हो या अगले जीवन में उच्च लोकों में हो, वो कैसे हैं? तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम शांति एवं त्रय धर्म मानो प्रपन्नः त्रय तीन चीज जो कही है कतागतम काम कामाम लभन्ते तो कहते इस प्रकार ऐसे जो लोग हैं विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोगते हैं और जैसे उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं पुनः इस जगत में उनको आना पड़ता है गतागतम या मर्त्य लोकम शांति तो इस प्रकार से कर्म कांड आदि के द्वारा उस विधि का कोई पालन आदि करने में बहुत तीव्रता से लगता है तो वो वास्तव में पुनः इस भौतिक जंजाल में आकर फंसता है। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। अरे अर्जुन इन वेद आदि में तीन गुणों की ही चर्चा की गई है, इन तीन गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करो, क्योंकि कर्म कांड के द्वारा व्यक्ति पुण्य कर्म करता है लेकिन वो बहुत रिस्की है। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि भगवान के जो पुत्र आदि हैं, जब वो खेलने के लिए गए तो उन्होंने कुएं में देखा क्या गिरा हुआ था, एक बड़े से छिपकली देखी गिरगिट। तो उनको लगा इतना बड़ा गिरगिट कैसे गिरा, कौन है, तो कृष्ण के पास गए। कृष्ण आए तो देखा गिरगिट, भगवान ने कहा मैं इसको निकाल देता हूं बाहर। हाथ स्पर्श करने मात्र से एक महान सौंदर्यवान राजा के रूप में, युवक के रूप में वो प्रकट हुआ और उन्होंने कहा क्यों मुझे ये कर बना। तो वो महान दानी हो सकता है व्यक्ति, उन्होंने ये कर्म कांड के विधि का अनुसरण किया जिसके कारण उनको एक गिरगिट का शरीर लेना पड़ा और कष्ट प्राप्त कर रहे थे, बल्कि वो ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। लेकिन भगवान ने क्या कहा, यत करोषि यदश्नासि यज्जिहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। दान भी देना है तो मुझे मेरी सेवा के लिए, यत जो भी यत करोषि जो कर रहे हो, यदश्नासि अश्नासि खाते हो, हाँ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो व्यक्ति ये जो कस्टमर सिचुएशन है उससे परे हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने ये जो ज्ञान कांड है उसको रिजेक्ट किया, उसको स्वीकारा नहीं, जो कर्म कांड है। और ज्ञान कांड भी उसी प्रकार से है, हाँ जो ज्ञानी है वो निराकार भगवान का जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रति आसक्त होते हैं और वो सोचते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, इसलिए वो चाहते कि बेस्ट है कि ब्रह्म में ही लीन हो जाना, निर्वाण बौद्धवादी कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए ये ब्रह्मवादी या ज्ञानी जो ज्ञान कांड का पालन करते हैं, ज्ञान कांड में दोनों आते हैं, योगी भी और ज्ञानी भी। योगी क्या चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, वो भी भौतिक ही है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ऐसे जो ज्ञान कांड में लगे हुए हैं वो लोग भी ज्ञान कांड का भी अनुसरण करना उचित नहीं है, बल्कि जो ज्ञानी है वो उन्नत धरातल तक जाते हैं लेकिन फिर भी नीचे इस भौतिक जगत में गिरते हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन आता है, यन्यारविन्दाक्ष विमुक्त मानिना स्तोया स्तोया स्तव भाव विशुद्ध बुद्धया आरोह्य प्रच्छन्न परम पदं तथा पतन्त्यधो अनादृत युष्मदन्द्रयः। कि यन्यारविन्दाक्ष विमुक्त मानिना, कि ऐसे जो ज्ञानी आदि है वह ब्रह्मवादी है, वो सोचते हैं अपने आप को विमुक्त मानिना, अपने आप को मुक्त समझते हैं, तो वास्तव में वो मुक्त नहीं है, वो फिर से ये जगत में गिर जाते हैं अपने धरातल से। क्यों गिरते हैं, पतन्ति अधो, पतन हो जाता है, अधो मींस नीचे, अनादृत युष्मदन्द्रयः, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब कृष्ण के चरण कमलों का वो क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। इसी कारण से जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान कांड के जो वो लोग हैं वो इस संसार में गिरते हैं। तो वास्तव में उपासना कांड तीसरा कांड वेदों में वर्णित है, उपासना कांड। हाँ उपासना कांड में देवताओं की पूजा का भी वर्णन आया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हाईएस्ट उपासना कृष्ण है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड अमृत बलिया जीवा खाए। वो कहते हैं कि ये जो कर्म कांड है ज्ञान कांड है ये तो विषय का भांडी है, विषय बर्तन ही है विषयों का, इसको अमृत बलिया जीवा खाए। व्यक्ति सोचता है अमृत के सब सोचता है कि अमृत है। हाँ, जैसे कर्म कांडी लोग इस जगत में सुख और उच्च लोक में सुख, ये तो अमृत ही लगता है उनको, लेकिन ये क्या है अमृत बोल के ये खा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे तार जन्म अधप आते जाए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा ये कर्म कांड और ज्ञान कांड का लाभ क्या है, नाना योनि सदा फिरे, फिर से ये जगत में अलग अलग योनियों से हमें गुजरना पड़ेगा। करदय भक्षण करे, अलग अलग योनियों में हमें पता नहीं क्या क्या खाएंगे, तारा जन्म अधप आते जाए, उनका जो जन्म है नीचों के योनियों में चला जाता है। इसलिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब इस कर्म कांड आदि का व्याख्या कर रहे थे तो भगवान ने 46-46 श्लोक में कहा यावन अर्थ उदपान है सर्वता संप्लोदे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणश्च विजानता। तो एक जैसे गांव में अलग अलग कुएं हुआ करते थे अलग अलग चीजों के लिए, जैसे हमें याद है हमारे गांव में एक कुआ होता था जहां जानवर पशुओं को पानी पिलाते थे, बस एक होता था गांव के सारे लोग उसमें कपड़े धोते थे, एक अभी भी है वो सारा सिस्टम, एक है जिसमें केवल पानी पीते हैं पीने के लिए। तो मतलब इतने आवश्यकता क्या है, यदि एक बड़ा जलाशय हो, कृष्ण कहते हैं संप्लुतोद के एक बड़ा जलाशय हो, जैसे मायापुर में आ जाते तो गंगा नदी बह रही है, उधर ही गौओं को पिलाया जा रहा है, पानी भी पीते कपड़े धोते नहाते आते, तो एक जलाशय सारा कार्य कर सकता है, तो बाकी किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कृष्ण जोड़ देते हैं कि ये जो ज्ञान कांड उपासना कांड आदि है उसका आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, इन सारे धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। हाँ, भगवान इस पर जोर देते हैं। तो वास्तव में क्योंकि कर्मकांड आदि का व्यक्ति आश्रय लेता है पापों से मुक्त होने के लिए, प्रायश्चित की जो विधि है वो कर्मकांडीय विधि है। हम श्रीमद् भागवतम में अजामिल के उपाख्यान में सुनते हैं कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि ये पाप करोगे तो उसके ये प्रायश्चित होने चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको रिजेक्ट कर दिया कर्मकांड की विधि को छठे स्तर में भी। तो वास्तव में भगवान इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं भगवत गीता में कि इन सब विधियों को छोड़कर व्यक्ति को मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए, और उसी को कृष्ण कहते हैं तपस्व्याभ्यादिको योगी ज्ञानेभ्योपि मतोदिकं कर्मेभ्याचादिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान ये हम कहते हैं कि योगी बनो, लेकिन कौन सा योगी बनो, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान् भजते योगा समययुक्त तमामता। तो योगी बनो जो हमेशा समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमी प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो वास्तव में भगवान बाकी चीजों को त्याग कर योगी या भक्ति योगी या भगवत भक्ति को ग्रहण करने के लिए हमें सिखा रहे हैं। और इस श्लोक से हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज सारे इन विधियों को त्याग कर रहे हैं कर्म कांडीय ज्ञान कांडीय आदि, और केवल भगवान का जो भगवत भक्ति है भगवत भक्ति विधि है भक्ति कांड, ये भी वर्णन आया है भक्ति कांड। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी भक्ति कृष्ण वशः भक्ति दार भजी। कहते कि शास्त्र ऐसे कह रहे हैं कर्म ज्ञान योग आदि को त्याग दो, भक्ति कृष्ण वशः, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण वश में होते हैं, इसलिए भक्ति के द्वारा ही उनका भजन करना चाहिए। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कर्मनिंदा कर्म त्याग सर्व शास्त्र कहे, कर्म है ते प्रेमा भक्ति कृष्ण कबू नहे। तो कर्म निंदा कर्म त्याग सकाम कर्म ज्ञान कांड विषय कांड का वर्णन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि व्यक्ति इनका आश्रय ग्रहण करता है तो प्रेम भक्ति कृष्ण कबू नहे, कभी भी कृष्ण के प्रति उसका प्रेम भक्ति जागृत नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भागवत में भी उद्धव को वही चीज कह रहे हैं, न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धवा न स्वाध्याय तपोस्त्यागो यथा भक्तिर ममोदितः। जितना भक्ति मुझे जीतने का सामर्थ्य रखती है उतना सामर्थ्य न साधयति माम योगो, ये सारे जो कर्म कांड ज्ञान कांड की जो विधियां हैं उसके द्वारा मुझे आप जीत नहीं सकते, या सांख्य के द्वारा स्वाध्याय तपस्या आदि के द्वारा जितना मुझे भगवत भक्ति आकृष्ट करती है। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है कि व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण भक्ति अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज के गुणों को वर्णन करते हुए सुत गोस्वामी ने उनको महामना कहा गया है। जैसे हमने शुरुआत में कहा, महामना का मतलब है महात्मा, महात्मा बनने के लिए, क्योंकि महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा बनना इतना सरल नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि कोई व्यक्ति रबर का स्टैंप लगा के कोई उपाधि अर्जन करना जितना इजी है उतना इजी नहीं है। महात्मा का मतलब है उसका गुण महात्माओं के समान होने चाहिए। महात्मा दुर्लभ कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे हजारों हजारों ये जो कर्म निष्ठ व्यक्ति हैं, कर्म कांडी जो व्यक्ति आदि हैं, उनमें एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन्म मुक्त। ऐसे हजारों हजारों ज्ञानी यो में भी एक व्यक्ति मुक्त होता है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे हजारों हजारों मुक्त लोगों में भी जो कृष्ण भक्त है वो बहुत अधिक दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी इस चीज पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए या कृष्ण भक्ति को अर्जन करना चाहिए। हाँ, इन चीजों को त्याग कर कर्म कांड ज्ञान कांड और जो योग आदि है। इसलिए महात्मा बनने का मतलब ही है कि महात्माओं के कार्यों में हमें मग्न होना चाहिए। महात्मा बनने का सरल उपाय क्या है? किसी महात्मा की सेवा में लग जा, सरलता से महात्मा बन सकते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद को पूछा कि हु इज प्योर डिवोटी, प्रभुपाद ने कहा कि जो प्योर डिवोटी की सेवा में लगा है वो भी शुद्ध भक्त है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, नारद मुनि, क्योंकि महात्मा का कार्य है सततम कीर्तयन, तो भगवान कीर्तन का मतलब है कीर्ति, कीर्ति का गान करना, उसको कीर्तन कहा गया है। तो महात्मा सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करता है, कीर्ति का गान करता है, इसलिए वो महात्मा है। और यदि हम कीर्ति का गान नहीं करते कृष्ण के, इसलिए गोस्वामियों को कहा गया है कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो। गोस्वामीगण क्या करते थे? ब्रज में घूमते हुए कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का उच्च स्वर से कीर्तन करते थे। तो कृष्ण का कीर्तन नहीं करेंगे तो हम महात्मा नहीं बनेंगे, हाँ दुरात्मा बनेंगे, दुरात्मा नीच शूद्र बनेंगे जब कृष्ण के अलावा किसी और का गुणों का कीर्तन करते हैं। जैसे जो नारद है वो अपने पूर्व के पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे, उपबरहन नाम के गंधर्व थे। तो उनको एक बार ब्रह्मा ने बुलाया, जो ब्रह्मा का कोई उन्होंने पार्टी अरेंज किया था कि आओ और थोड़ा कीर्तन करो। ये उपबरहन गंधर्व गंधर्व विद्या है, ये गान नृत्य ये जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग आदि ये गंधर्व विद्या है, तो ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो जब ब्रह्मा ने बुलाया तो वो आए और उनको कहा अब गान कीजिए। तो उनके संग में कई सारे उनकी सखिया भी थी, गंधर्विकाएं भी थी। तो ये उनको इंप्रेस करने के लिए उनके साथ क्या गाने लगा, फिल्म सॉन्ग गाने लगा। ब्रह्मा ने उनको कहा निकृष्ट नेक शूद्र, तुम्हें यहां सज्जनों के समाज में, सज्जनों की सभा में भगवत गुणगान करने के लिए बुलाया था और तुम ये सब गुणगान कर रहे हो, शूद्र बन जाओ। तुरंत उनका शूद्राणी के पुत्र के रूप में जन्म होता है। भागवत में हम देखते हैं ना, दासी पुत्र के रूप में वही जन्म लिया उन्होंने, नारद जो थे दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया वो जो गंधर्व था उसको ब्रह्म गंधर्व, और फिर बल्कि न्यूज शूद्र आदि था, लेकिन आज वो क्या बने हैं, महामना है, महात्मा है। कैसे, वेदांती जो महान भगवत भक्त थे उन्होंने जब व्यासदेव ने पूछा कि आप बताओ कृष्ण का गुणगान भगवत सेवा का क्या महानता है, तो उन्होंने कहा मेरे अपने जीवन से मैं देखता हूं कि मेरी जो माँ है एक दासी थी, शूद्र थी या शूद्राणी थी, मैं दासी पुत्र था। एक बार चैत्र मास के समय में कई सारे जो महात्मा गण हैं वह हमारे उस स्थान में निवास करने आए, तो मेरी माता उनकी सेवा करती थी, तो मैं भी उनकी सेवाओं में लग गया उन महात्माओं की, और मैं बाकी खेल कूद आदि में मेरा मन लग ही नहीं रहा था, एक ही चीज में मैं हमेशा उन महात्माओं की सेवा में लगा रहता था। वो जैसा कहते थे वैसा करता था, कृष्ण कथा आदि का श्रवण करता था, उनका उचित ग्रहण करता था, और इस चीज का फल क्या हुआ, आज मैं नारद के रूप में हूं। नारद का मतलब ही है जो नारायण को देने वाले हैं, द मीन्स देने वाले, नार मीन्स नारायण, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो इस प्रकार से इस श्लोक में सुंदर गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज है वो महामना है, महात्मा है। तो महात्मा क्या ये कोई किसी के ऊपर दब्बा नहीं लगाता कि आप हरे झंडे से, महात्मा गांधी ने तो जो नीच शूद्र आदि थे उनके ऊपर ये लगा दिया, स्टैंप लगाया हरे झंडे। हाँ, मुझे याद है कि गांव में भी गांव के एक साइड में वो लोग रहते हैं जिनको हरिजन कहा गया है। हमारे गांव में भी एक एरिया है जहाँ जो महात्मा गांधी के द्वारा या फिर जो शूद्र कैटेगरी के हैं उनको हरिजन कहते हैं, तो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था हरिजन क्यों कहा जाता है। हम हमेशा सोचते थे निकृष्ट लोग हैं, लेकिन ये हरिजन शब्द वास्तव में ये वैष्णव के लिए है। हाँ, हरिजन हरि के जो जन है उनको हरिजन कहा जाता है, बहुत बड़ा उपाधि है लेकिन वैसे ही दिया, लेकिन वो हरिजन हरि के जन जो कार्य करते हैं वो कार्य नहीं करते वो लोग। हरि के जन तो क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिजन प्रभुपाद ने केवल टाइटल ही नहीं दिया, बनाया उन्होंने, हरिजन क्रिएट किया। हाँ, उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा उन्होंने विग्रह आदि दिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जो कार्य है या श्रील प्रभुपाद वास्तव में महान महामना है, महान महात्मा है, क्योंकि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया जो किसी और ने नहीं किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद को सर्वोत्कृष्ट भक्त कहा जाता है। तो महात्मा बनने का हम सबको भी अवसर है इस दिसंबर महीने में। कैसे बन सकते हैं महात्मा, प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो। क्योंकि दो ही चीजें हैं जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक जो जीव है वो क्या हो सकता है, माया से विमुख हो सकता है और कृष्ण की ओर उन्मुख हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं Hmm. साधु शास्त्र कृपाय जदि कृष्ण मुखाय से जीवन स्तरे माया तहारे छाड़ाय। माया उस व्यक्ति को छोड़ सकती है यदि दो चीजों के संपर्क में व्यक्ति आता है, एक है साधु और दूसरा है शास्त्र। साधु शास्त्र कृपाय जदि कृष्ण मुख है, तो वास्तव में प्रभुपाद ने हमें दोनों चीजें दी हैं, शास्त्र भी दी है और साधुगण भी दी है। से जीवन स्तरे माया तहारे छाड़े, माया उसको छोड़ सकती है, क्योंकि ये ग्रंथ क्या करने वाले हैं, कर्म ग्रंथि को काटने वाले हैं। ग्रंथ क्यों है, ग्रंथ नाम क्यों है पुस्तकों का, क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो भौतिक आसक्ति रूपी जो ग्रंथि है, ग्रंथि मीन्स नॉट गांठ, उसको जो काटते हैं उसको ग्रंथ कहा गया है। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है बहुत अमूल्य रत्न है और ये विधि है। हम महात्मा श्री प्रभुपाद की सेवा करने का मौका बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हम द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये ग्रंथ किसी की गोद में जाते हैं, हाथ में लगते हैं तो व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है। एक डिवोटी बता रहे थे कि एक बार विदेश में एक घर में प्रभुपाद की कुछ किताबें पड़ी थी, फट गई थी, तो रद्दी में भेज रहे थे, तो एक जो नौकरानी है उसने सारे रद्दी को बांधा रस्सी से और ले जा रही थी। जाते जाते कुछ पेज गिर गए रास्ते में, कुछ पेज, तीन चार पेज गिर गए और एक व्यक्ति बहुत परेशान था, आत्महत्या करने के विचार में घूम रहा था इधर उधर। जाते जाते उन दो रस्ते में पेज गिरे थे, ऐसे उसका मन गया और उठाया उस पन्नों को और थोड़ा सा पढ़ा, पढ़ा तो इतना परिवर्तन आया कि उसने जो हरे कृष्णा टेम्पल से वो सर्च करना शुरू किया और भक्त बना। तो उसको पूछा कौन सा बुक था, उसने बाद में देखा कि ये बुक के पेज थे, हरे कृष्णा चुनौती जो बुक था उसके पन्ने थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ग्रंथ, क्योंकि ये अपौरुषेय ज्ञान है, चार प्रकार के जो दोष है उनसे मुक्त है, इसलिए प्रभावशाली है। हजारों ग्रंथ लोगों ने लिखे हैं, क्यों प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि उनमें चार प्रकार के दोष है। प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उनकी जो वाणी है ये साक्षात भगवत वाणी है और चार प्रकार के दोषों से मुक्त है, हाँ, इसलिए ये पावरफुल है और ये वास्तव में एक शिष्य का कर्तव्य है। हाँ, जो ये भावना होनी चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा देव ने कहा कि चलो अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेरे धाम में चलो, प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनये प्रपतत प्रसंगा कृत्वात्म सात सुरर्षिना भगवान ग्रहीता स्वहं कथम विसृजे तव भृत्य सेवां। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सातवें अध्याय में भागवतम के सातवें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के प्रवास कर रहा हूं, ये सांप के भांति है सारे जो असुरगण, ऐसे कुएं में मैं गिरा था सांप के कुएं में और उसमें से मुझे निकाला गया है। किसने निकाला था, नारद ने। वो कहते हैं कथम नो विसृजे तव भृत्य सेवा, वैसे नारद ने मुझे निकाला है तो मैं कैसे भूलूंगा उनकी सेवा न करना। हाँ, कहते तब आपके जो भृत्य हैं उनकी सेवा में लगे रहना चाहता हूं मैं बस। हाँ, तो ये जो भावना प्रहलाद महाराज की थी, तो वही भावना वास्तव में एक शिष्य की होती है अपने गुरु की सेवा के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कृष्ण प्राप्ति का शॉर्टकट इस महीने में हमें होता है, कृष्ण को शॉर्टकट हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, दिस इज द प्राइस यू पे फॉर गेटिंग कृष्णा, योर इंटेंस ईगरनेस टू गेट कृष्णा, हाउ डू यू गेट कृष्णा, बाय गिविंग कृष्णा टू अदर्स, दैट्स हाउ यू गेट कृष्णा, दिस इज शॉर्टकट, द मोर यू गिव कृष्णा to others, the more you get Krishna. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये शॉर्टकट है, कृष्ण को जितना आप दूसरों को दोगे उतना ही अधिक कृष्ण आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तब हम सरलता से महात्मा बन सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने के संपर्क में जो भी आया, उनके ग्रंथों के संपर्क में, उनके भक्तों के संपर्क में, उनके मंदिरों के संपर्क में, प्रसाद आदि के संपर्क में, या कृष्ण भावना की किसी भी चीज के संपर्क में व्यक्ति आया, वो महात्मा बना है। तो इसलिए हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, महात्मा बनने के लिए हैं। तो महात्मा बनने का जो सरल विधि श्रील प्रभुपाद ने दी है, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, तीन चीजें, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये तीन चीजें वास्तव में महात्मा बना देती है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौ